ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सो आज श्रीमद् भागवत का जो साधारण प्रवचन है कि ये सब वैष्णवगण पूछा है कि आप कुछ ब्रज लीला के बारे में सुनाइए, लेकिन ब्रज लीला वही श्रीमद् भागवतम है। प्रभुपद अनुवादित किया श्रीमद् भागवतम, द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो ब्रज लीला वही है ठाकुर जी का कथा, कृष्ण कथा। तो मैंने विचार किया कि हम लोग नंदगांव जाएंगे आज। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक पुस्तक रचाया, इसका नाम है ब्रज रीति चिंतामणि। अब सब जानते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अब सब जानते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती कौन सा गाना रचाया जिसे हम रोज गाते हैं। सब लोग बोले संसार प्रेयर्स, लेकिन संसार माने ये ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। सो हम सो एवरीबॉडी सेज दिस संसार प्रेयर्स, लेकिन हम संसार से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इसका वास्तविक नाम है गुरु वास्तकम। आज गुरु से आज प्रार्थना है कि संसार से बच जाए। ये संसार दावा नहीं है, गुरु वास्तकम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर पुस्तक रचाया ब्रज रीति चिंतामणि, इसमें पूरे ब्रज का वर्णन है। और जो नंदगांव के पास आते हैं वो बताते हैं तत्चिरुभूतम अपार शोभम नंदीश्वरम सारुगणा वदन्ति नंदीश्वरम यम दधिरी रूपम सी नंद राजालय राजमानम। सो वृंदावन का वर्णन कर रहे, सो जब थट का प्रयोग थट शब्द का प्रयोग करते हैं वो इसी वृंदावन के बारे में बात कर रहे हैं। तथा शिरोभूतम, इस वृंदावन का जो मुकुट मणि है वे है नंदीश्वर पर्वत। जो नंदगांव है इसको नंदीश्वर पर्वत कहते हैं, क्योंकि ये पर्वत भगवान शंकर का अवतार है। क्योंकि भगवान शंकर ने ब्रज में आकर बहुत घोर तपस्या की हजारों साल तक, और फिर ठाकुर जी प्रकट हो गया और इनसे बोले कि आप क्या वरदान चाहते हो। और शिव ने कहा कि मुझे पता है कि द्वापर के अंत में आपका लीला यहन ब्रज में होंगे, सो अगर हम एक पत्र बन सकते हैं। फिर सोचे ये बहुत अधिक पूछा है, तो शायद कुछ धूल बन सकते हैं जिससे हम ये सब लीला के दर्शन करेंगे। और ठाकुर जी ने कहा कि क्यों धूल और पत्र, अब पर्वत बनाओ, पहाड़ बनाओ। इसी पर्व के ऊपर मेरे बाबा अपना नंद महल बनाएंगे। तो ये जो नंदगांव है ये नंदीश्वर पर्वत है, इसका ये भगवान शंकर का अवतार है। और ये ब्रज की मुकुट मणि, अपार सोम जिसका शोभ अपार है तत्सूतम अपार शोभम नंदीश्वरम साधुगना बदंती लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अकेले बता रहे साधुगण बदंती ये सब साधुगण बताते कि ये ब्रज की मुकुटमणी और पहले से ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन किया कि गिरिराज ये ब्रज का तिलक है जो गिरिराज पर्वत ये ब्रज का तिलक है और ये नंदीश्वर पर्वत ये ब्रज का मुकुटमणि है ब्रज का मुकुट है तथा चिरभूतम अपार शुभम नंदीश्वरम साधु गण वदंती नंदीश्वरम यम तदीय रूपम वो स्वयं शंकर भगवान के अवतार है श्री नंद राजालय राजमानम राजालय रोज हम लोग जाते कहां कार्यालय लेकिन आप समझ सकते राजालय क्या होगा राजमहल और कार्यालय जहां कार्य होते हैं तो राजालय श्री नंद राजालय राजमानम नंद महाराज का महल वहां पहाड़ के ऊपर विराजमान है वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक नंदीश्वर अष्टक रचाए हैं और बृंदकुंड में हम राजभोग आर्थिक में हम गाते हैं कौन सा बृंद देवी अष्टक वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती के रचित गाना है भजन है तो हमने सोचे कि ये बृंद देवी अष्टक रचने के पश्चात विश्वनाथ चक्रवर्ती नंदगांव की ओर देखा और ये नंदीश्वर अष्टक रचाया क्योंकि एक श्लोक वो वर्णन है जो दृष्टि है नंदगांव का बृंदकुंड से नंदगांव के यत्रा व्रजादिपे पुरा अप्रतिमा प्रकाश प्रसाद मूल कलसो परिनित रंगी पारीक्षते भुविजया ध्वज केतु भूतो नंदीश्वरम सर्वद मंदम उदम ददातु यत्र उसी स्थान पे यत्र ब्रजारी पे जो ब्रज के राजा है उनका पूरा अप्रतिमा अद्वितीय गाउन प्रकाशित रहते हैं यत्रा ब्रजादी पे पूरा अप्रतिम प्रकाश और अभी 7-10 साल पहले किसी ने श्वेत संगमर पत्र चारों ओर लगाए नंद महल के सो अभी चारों ओर से ये प्रकाशित होते हैं यत्रा ब्रजादी पे पूरा अप्रतिम प्रकाश प्रासाद मूर ये मंदिर के ऊपर एक शिखर है प्रसाद मूर इसके ऊपर कलश प्रासाद ऊपर मूर कलशो परि नित्य रंगी और कलश के ऊपर कोई नृत्य करते हैं क्या है बारीक्षते भुविजया ध्वज केत भूतो सबसे पहले बाढ़ी बाढ़ी मानी पीकाक ऐसा हम रोज गाते श्रृंगार दर्शन में बाढ़ावतम समितम सो बाढ़ी माने मोर मोर नाचते है और जय ध्वज जैसा हमारा भूतपूर्व अध्यक्ष है और बहुत संकीर्तन प्रचार की है जय ध्वज प्रभु अर्जेंटीना के जय ध्वज आप समझ सकते जैसे जय पताका वो एक ही बात है जय ध्वज विक्ट्री फ्लाई वो भी नित्य रंगी बाहिक्षते इक्षते माने देखते बाहिक्षते बाहिक्षते बाही मोर देखते और जय ध्वज अखे तो अद्भुत अद्भुत जय ध्वज और यही दर्शन वृंदकुंड आप देखेंगे वृंदकुंड का दर्शन करेंगे वृंदकुंड से तो ये देखेंगे कलश के ऊपर एक बहुत सुंदर झंडा नाच कर रहे हवा में. प्रसाद मूड कलशो पर नित्य रंगी परीक्षित भूमि जया ध्वज के तुभूतो नंदी सरम समर मंदम उदम ददातु. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती हमको आशीर्वाद दे रहे कि ये नंदीश्वर पर्वत आपको बहुत से सुख प्रदान करेगा करे. और चैतन्य महाप्रभु वो भी आया नंदगामी. ये चैतन्य चर्च में भी वर्णन है. ये चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में वृंदावन का गमन. तो चैतन्य महाप्रभु नंदगांव के पास आए और किसी गांववासी से पूछा कि यह कोई ठाकुर जी है. ये गांव वाले बताए कि इस पर्वत के ऊपर पहाड़ के ऊपर एक गुफा है और गुफे में एक बहुत बड़ा आदमी है छोटा सी मात्र से और बीच में त्रिबंगलित एक ग्वाल. सो चैतन्य महाप्रभु ये पहाड़ के ऊपर चढ़ करके इस गुफा में अंदर आए और देखे बहुत बड़ी नंद बाबा जिसके पीली पगड़ी थी और छोटे सी माँ ये सोदा और बीच में त्रिबंगलित एक ग्वाल और चैतन्य महाप्रभु ग्वाल का शरीर का स्पर्श करने लगे. शायद आपने देखा चैतन्य चैत्र में दिए चित्र. ये चित्र देखे चैतन्य चैत्र में महाप्रभु स्पर्श कर रही ठाकुर जी का. मैंने इस चित्र के लिए पोज, व्हाट डू यू से पोज, पोज मीन्स POSE, इसका नकल किया. मतलब कि मैं पोर्टलैंड एक यूनाइटेड स्टेट्स की बायोकोन में एक स्थान है पोर्टलैंड ओरेगन. मैं इसके अध्यक्ष था. मैं लॉस एंजलिस में आया किसी कारण से और ये चैतन्य चैतामृत का मैराथन. अब तो लीलामृत में पढ़ लिया कि चैतन्य चैतामृत का मैराथन चल रहा था. सो मैं रास्ते में जा रहा था और जादूरानी आया, हे ये नाओ, तू ये नाओ, आपका आवश्यकत है, तो इस चित्र के लिए नकल करो पोज. और चित्र लिया और यो जो बुद्धिस्ट गुरु जो महाप्रभु को गंध चीज खिलाया और ये कील आया उसको पकड़ करके वो गुरु के सिर पर डाला थाली, बहुत भारी थाली, ये भी हम इसका नकल किया. इसके पीछे एक बुरा आदमी दंड पकड़ करके ऐसा, वो भी मैं. और चैतन्य महाप्रभु वो नदी पारने वाला था और जगन्नाथपुरी से जा रहा था कहीं और जगदानंद उसके पीछे आना चाहते थे लेकिन जगदानंद के क्षेत्र संन्यास तो महाप्रभु नौके में बैठे और बसंत भक्तों के उसको वापस ले जाओ और जगदानंद बेहोश होने लगे. और जगदानंद का भी ये मेरा चित्र भी है लेकिन तीन बार हम तो गिरने लगे और तीन बार उसके चित्र बनाए. इसी प्रसंग में मेरे बहुत से चित्र है. अंत में किसी ने कहा जालरानी को, आपने जानते ये, आपने जानती ये पोर्टलैंड मंदिर के अध्यक्ष है. वो बोला माफ कीजिए प्रभु से, नो मैं तो बहुत खुशी है कि हम टॉपर के मैराथन कुछ भाग लिया. ये मेरे छोटी सी बाग था बाबा के चैतन्य चैत्र में का मैराथन. तो लेकिन आजकल जब आप जाएंगे नंदगांव, ये गुफा मालूम नहीं कहां है लेकिन अभी बहुत बड़ा मंदिर है. इसमें आएंगे बहुत बड़ा नंद बाबा का दर्शन करेंगे जिसके पीली पगड़ी है और बगल में एक छोटी सी माँ यशोदा भी उपस्थित है. लेकिन आजकल बीच में दोनों है, कृष्णा और बलदाव. लेकिन आप जाएंगे कौन गाया नंदगांव दर्शन किया, तो आपको पता था कि कौन कन्हैया है कौन बलदाव है, आपको कोई पता नहीं. एक ही पोशाक, एक ही मुकुट, एक ही बंसी, एक ही बैंगल, एक ही नूपुर, एक ही धोती, सब एक से एक, हर सिंगर सब एक से एक। अब पता नहीं कर सकते कौन कहने है कोई बदलाव है, लेकिन विश्वासी गांव से पूछ लेंगे वो बताएगा कि कन्हैया के अधिक प्रेम है माँ यशोदे के प्रति, सो कन्हैया माँ यशोदे का तरह है, और बलदाव का अधिक प्रेम है नंद बाबा के प्रति, सो वो नंद बाबा का तरह है। नहीं तो आप देखेंगे कि अगर आप बहुत तीव्र अंक है, अच्छा अंक है, आप देख सकते हैं कि बलदाव थोड़ा सा बड़ा है, और आपका अंक बहुत तीव्र है, आप देख सकते हैं कि बलदाव जी का अंक में, ये हमारा आई टेस्ट अंक का परीक्षा है, जब आप डॉक्टर में जाते वो ये सब हम देखते हैं, एच के आर जेड ये हमारा ब्रज का आई टेस्ट। आपका अंक बहुत अच्छा है तो आप देख सकते हैं कि बलदाव जी के अंक में थोड़ा सा लाल सा है, क्योंकि अधिक बरूनी पीते हैं। अगर ये विश्वासी से पूछ लेंगे कि क्यों ऐसे है बिल्कुल एक से एक, वो सर्वप्रथम बताएंगे कि बलदाव वो सोचे कि मैं बड़ा भाई हूं, मेरा कर्तव्य है छोटे भाई का रक्षा करना, तो चंदन जलाकर इसका खाला पूरा अंगी अंग में लगाते, और एक ही मुकुट, एक ही पोशाक, एक ही बैंगल, एक ही नूपुर, एक ही हार, सब एक से एक लगाते हैं, जिससे ये राक्षस नहीं बता सकते कि कौन कन्हैया है और कौन बलदाव है। दूसरा कारण भी है कि कृष्णा बलदाव वो लगभग जुड़वा है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा पे हम इसको क्या कहते हैं, बालाराम पूर्णिमा, कभी कभी लोग बालाराम जयंती कहते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक लेख प्रस्तुत किया, ये जयंती का अर्थ है जो थारा मंडल का जो स्थिति था ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ वही जयंती है। आजकल सबका जयंती है, गांधी जयंती, नेहरू जयंती, सबके, लेकिन जयंती हम नहीं बता सकते, श्रृंग जयंती, बालाराम जयंती, कि ये जयंती केवल ठाकुर जी भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के लिए, बालाराम पूर्णिमा, बालाराम आविर्भाव आप कह सकते हैं, बालाराम जयंती नहीं कहना चाहिए। ये बालाराम श्रावण पूर्णिमा, ये बालाराम पूर्णिमा, बलदाव जी का जन्म हुआ। सो ये अगली महीने है भद्र, भद्र का कृष्ण पक्ष अष्टमी, कृष्णाष्टमी, फिर ठाकुर जी के जन्म हुआ, तो ठीक समय पर ठाकुर जी प्रकट हो गया। जाए सीसी गोरनी था कृष्ण बलराम से राधे रास बिहारी सीतारण लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की ऑटोमेटिक पायलट। सो केवल आठ दिन का फर्क है, सो लगभग जुड़वा है, और हम सोचते हैं कि आपके बॉम्बे में भी कभी कभी लोगों के पास जुड़वा है तो एक ही पोशाक एक ही श्रृंगार में लगाते हैं ना, आपके बॉम्बे में भी ऐसा होते हैं। तीसरा कारण भी है कि माँ यशोदा और माँ रोहिणी बहुत ही चतुर है, जो अभी माँ है माँ यशोदा रोहिणी का चतुरता पहचान लेंगी, जो मां बनने वाली है एक दिन आप कुछ सीख सकती है माँ यशोदा और माँ रोहिणी से। अभी तक जो शादी नहीं किया मैं वरदान दूंगा कि आपको ऐसे पत्नी मिलेंगे जितना चतुर है जैसे माँ यशोदा और माँ रोहिणी। ये दोनों जानती है बहुत अच्छी तरह से, अगर अलग अलग पोशाक में लगाएंगे, अलग अलग श्रृंगार में लगाएंगे, अलग अलग हार लगाएंगे, तो ये दोनों भैया आपस में झगड़ रखेंगे, नहीं मैं बालदाव का मुकुट चाहिए, नहीं नहीं मैं कन्हैया का मुकुट चाहिए, उसका हार चाहिए, नहीं नहीं उसका कुंडल चाहिए, नहीं नहीं उसका कुर्ता चाहिए, इसका बंसी चाहिए, इसका मुकुट चाहिए, इसका नूपुर चाहिए, वो आपस में झगड़ रखेंगे। So Maa Yasoda aur Maa Rohini bahut hi chatur hai. Wo ek hi posak, ek hi mukhe, ek hi bansi, sab ek se ek. Aur ye dono bhaiya aapas mein jhagda nahi karte. So Thakur ji, finally iska janam hua Gokul mein. Phir kuch, jab chota bacha tha, to phir ye Putana, Trinarvat, ye sab alag alag prakar ka, ye kaunsa Shakta, Shakata Asura, ye sab asur aaye, ye dono Arjun Briksh gir pare, to phir wahan se chal par, ye ant mein Nandagaon mein vas karne lage. Ramne kaha tha ki ye Nandagaon Bhagwan Shankar ka avatar hai. So ek din ki baat hai, Shankar Bhagwan swayam aaya Nandalala ka darshan ke liye. Ye lalsa laya ki Nandalala ka darshan hoga. Iske damru leke aaye. So Maa Yasoda Bhai, ye kab awaaz kya hai? Maa Yasoda ne dekhe bahut ghor yogi wahan khade hai. Iska pura sharir mein raak. Iska gale mein saamp, bichu, makri. So Maa Yasoda darwaza band kar di. Aur Shankar Bhagwan rone laga. Are maya, main tera lala ke darshan karne ke liye aaya. Nee, nee, mera lala tukho dega to dhar jayega. Nee, bhaiya, main bahut dur se aaya, ab Nanda Lala ke darshan karne ke liye aaya. Nee, nee, baba, tu jao yahan se, tukho dega to mera lala dhar jayega. Nee, nee, bhaiya, main bahut dur se aaya. Jaisa hamare Naam Chintamani, bahut dur se aaya, dur ban, bahut dur ban se aaya. Ye braj ke sabse dur ban hai. In the door hai, wo South Africa mein hai. Isliye ye dur ban. Jo Hindi nahi samajhti, dur mane far. Main bahut dur se aaya, bahut dur ban se aaya. Nandalala ke darshan ke. Nee, nee, baba, tu jao yahan se. Mila lala dhar jayega. So Shankar Bhagwan bole ki main bahar baithe runga jab tak ye bahar na aaye. Aur Maa Yasoda bahar aaye ki dekho baba, tu hum sab ban janti hai achi tarah, tu yahan nahi baithe rahenge sare din, tu keval ek cheez ke liye aaya. Kiske liye? Roti. Ab roti jante hai, ab chapati jante hai, aur jitni bhi Gujarati bhai hain, itne patli chapati banate jaise khagas. Lekin braj mein iska prayog nahi karte, aise banate. Ting 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 ting. Bahut mota hai. Iske upar gaur ka bane hui ghee aur makkhan laga hai. Aur suri sab baba jate, Radhishyam Madhukari hai, Radhishyam Madhukari, Haribo roti do. Aur kitna mota roti milte hai. Saag bhi milte hai. Aur kheer, aise kheer milte hai. Woo, pucho mat. Kabhi kabhi hum kisi life member ke ghar par jate hai, aise kheer khilate hai, jaise ye chawal tel rahe doodh mein. Lekin braj mein itna gara hai, ki katora ka vashakta nahi, wo put a thali par laga sakti. Aise kheer milte hai. So main sab baba janti hai, tu keval ek cheez ke liye, kuch roti ke liye aaya, to ye roti le lo aur bahar chale jaiye, yahan se chalo. So Shankar Bhagwan niras ho gaya. Hopeless and helpless, niras ho gaya. So wahan ek van mein baith kar wo aasha rakhte the. Kya aasha rakhte the? कि नंदलाला का दर्शन होगा। और आप सब लोग क्या आशा रखते हैं? आप ये आशा भी रखते हैं ना कि नंदलाला के दर्शन कभी होगा? आप वृंदावन में आते और नंगी पाव दीन बंधु के साथ घूमते, कभी कभी खाता पाव में आ जाते, किस लिए? कि नंदलाला का दर्शन कभी होगा, ये आशा रखते हैं। और ये कृष्ण भावना है। In English we say in a nutshell, संक्षेप रूप में ये कृष्ण भावना है। जो कुछ हम करते हैं, हम सोलह माला करते, चार नियम का पालन करते, मंगल आरती में आ जाते कम से कम गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी और अष्टमी क्यों? क्योंकि हम आशा रखते हैं कि नंदलाला का दर्शन होगा एक दिन। जो कुछ हम करते इसी अभिलाषा से कि नंदलाला का दर्शन। और ये कृष्ण भावना है। अब ये आपका मन में ये फॉर्मूला, ये प्रणाली लगाओ आपका मन में। ये जो कुछ आप करेंगे, कुछ काम करने से पहले हम ये काम किस लिए कर रहे हैं? कि नंदलाला का दर्शन होगा और मेरे इंद्रिय के तृप्ति होगा। ये कार्य हम कर रहे हैं, करने वाले हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि जिससे नंदलाला का दर्शन होगा और मेरे इंद्रिय के तृप्ति होगा। ये आप प्रणाली आपके मन में लगाएंगे तो फिर आप हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेंगे। तो शंकर भगवान आशा रखते थे। उसी समय नंदलाला ने पता हुआ कि इसके सबसे प्रिय वाक्य आया, क्यों हम जानते श्रीमद् भागवत ग्यारह स्कंद में बताते वैष्णवानम यथा शंभु, सबसे प्रिय वाक्य थे शंभु। इसके सर्व प्रिय वाक्य आया लेकिन उसके दर्शन नहीं हो पाया। सो नंदलाला रोने लगे और माँ ये सोर सब प्रकार के प्रयास प्रयत्न कोशिश, शी ट्राइड सो मेनी थिंग्स इसके शांत हो जाए। ये सब बड़ी बड़ी गोपियां भी आए, बहुत प्रयास प्रयत्न कोशिश, बहुत ट्राई एंड ट्राई कि नंदलाला का शांत हो जाए, लेकिन सब फेल हो गया। लेकिन एक बूढ़ी गोपी भी थी, न केवल बूढ़ी लेकिन बूढ़ी मान भी थी। इसने कहा कि किसी ने थरलाला के ऊपर नजर लगाए। इन इंग्लिश वी से ईवल आए। लेकिन हमने ये शब्द सीख लिया क्योंकि हम तो श्रीमद् भागवतम क्लास में बैठे रहते भागवतम के साथ, और हम देखते हैं ये श्लोक को, ये देवनागरी देखते हैं और पीछे ये सब देवनागरी का ट्रांसलिटरेशन है। तो इसी तरह केवल भागवतम क्लास में हम तो देवनागरी सीख लिए। तो सबसे पहली बार हम भारत में आया और वृंदावन के रास्ते में था, सबने देखा एक ट्रक लोरी हमारे सामने है, क्या लिखे है? बूढ़ी नजर वाली तेरी मुंह काला। है ना? So, किसी ने ठेला लाला के ऊपर नजर लगाई। तो कौन आया? मां यशोदा के कहा कि उपनंद आया, अभिनंद भी आया, ब्रिस्पानु महाराज भी आया, ओ एक घोर जोगी आया, पूरा शरीर में राख, गले में सांप, बिच्छू, मकड़ी। कहां गए? मैं उसको कुछ रोटी खिलाया और उसको बाहर भेजा। अच्छा, सो ये सब गोपियां पूरे नंदगांव के चरण और ढूंढने के लिए चले गए। और अंत में एक वन में वो देखे शंकर भगवान बैठे हैं और आशा रखते थे कि नंदलाला के दर्शन होंगे। इसलिए क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ आशा है, मतलब ये सब आशाओं का ईश्वर है, इसलिए शंकर भगवान का नाम हो गया आशेश्वर महादेव और ये वन हो गया आशेश्वर वन। इतना गहरा वन है कि गर्मियों के बीच में भी ठंडा है वहां, इतना गहरा गहरा वन है। तो सागर भगवान बेकर वहां बेकर आशा रखते थे कि नंदलाल के तो ये सब गोपीगण आए और ये घोर जोगी देखा तो वही होगा तो उनके पास गए चल रहे योगी नंद भवन में यस्मत मां बुलावे बाकी लाला को नजर लगे तो बेरायनोन करावे इस अब आते प्रक्रम में सारे दिन हम बताते रहते चलो 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 चल रहे योगी नंद मव में यस्मत मां बुलाए मां ये सूर्य बुलावे किसी प्रकार इसका नजर का लाज करो जिसके लाला के शांत हो जाए रायनोन राय मने सरसों के तेल नोन मने अनोन मने नमक ये गांव वाले बताते कि ये नजर इसी तरह से सो रायनोन करावे इसके इलाज करो तो फिर शंकर भगवान ऊपर नंद महल में लाया माँ यशोदे दरवाजे खोले लाला ने देखे शंकर भगवान थोड़ा हंसने लगे तो माँ यशोदे बंद कर दिया और फिर रोने लगे तो माँ यशोदे बाहर आए देखो बाबा तेरे दर्शन हो गया इसके रोने का इलाज करो इसको रोने बंद करो मैया केवल एक ही उपाय है ओनली वन वे टू स्टॉप इस क्राइम सो बताओ बताओ जल्दी बताओ जब तेरा लाला का पाव मेरे सिर पर आ जाएगा तो फिर इसके रोने बंद हो जाएगा माँ यशोदा बोले नहीं 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 ये सांप बिच्छू मकड़ी हिंदी में जो हम नो कहना चाहते नहीं और ये सब गोपीकान क्या बताया हाँ हम भी सीख लिए कि यस इस हाँ क्योंकि हम सबसे पहले बार वृंदावन मंदिर से ज्वाइन किया हमको लाइफ मेंबरशिप मीरठ में भेजा दिल्ली से लगभग 7 किलोमीटर दूर है एक स्थान है मीरठ तो वहां एक लाइफ मेंबर था इसका नाम था एमसी गोयल भी याद भी है और हम उनसे बात कर रहा था और उसका फोन बज रहा था सो फोन उठा के मैं सच बोल रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ये अदर कॉन्वर्सेशन मैंने सुना हे हाँ हे हाँ 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 हे हाँ हाँ, हाँ, अच्छा 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 जी 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 है हाँ, है हाँ, हाँ, अच्छा नमस्कार मैं सच बोल रहा हूं तो यस मनी हाँ तो ये सब गोपी गांग क्या बोला और माँ यशोदा बोले नहीं 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 सांप बिच्छू मकड़ी नहीं नहीं और सब गोपीगण क्या बोला यू आर नॉट वेरी कन्विंसिंग व्हाट यू से कन्विंसिंग यू आर नॉट वेरी कन्विंसिंग ऑलराइट आप बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है माँ ये सोलो नहीं नहीं ये सांप बिच्छू मकड़ी और सब गोपी गांग क्या बोला ओके सो ये हाथ जीत लिया तो फिर माँ ये सोलो दरवाजे खोली नंदलाला को उठा लिया नंदलाला उसके पाव शंकर भगवान के सिर के ऊपर लगाया और शंकर भगवान वो नटराज है वो नाचने लगे और लाला हंसने लगे जब छोटा लाला को हंसते देखा तो हमारा हृदय के अंदर ये बादशाली भाव स्फुरित हो जाते है ना जब कोई छोटा लाला को देखते हंसते 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 तो ये बादशाली भाव स्फुरित हो जाते हृदय की तो सब गोपीगण बोले शंकर भगवान से कि मेरे योगी नंद भव में ब्रज में बासों कीजिए जब जब मेरा लाला रोबे तब तक दर्शन दीजिए ये वेरे योगी जैसे हम बताते प्रक्रम में चलो चलो दिस इज विपरीत वेरे स्टे नाउ यू स्टे वेरे योगी नंद भव में ब्रिज में बासों कीजिए अब ये कैलाश को बुझाओ, अभी ब्रजवास करो, कैलाश बुझाओ और ब्रजवास करो। जब जब मेरा लाला रोबे, जब मेरा लाला रोते हैं, तो तब तक दर्शक हम आपका दर्शन दीजिए इनको। और सागर भगवान बोले थे कि मैं ये नंद बाबा के प्रांगण में रहूंगा, लेकिन दो शर्त है, दिस इज नॉट अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस। क्या शर्त है? जब आपका लाला का स्नान, आप नंदा लाला का स्नान कराती है, तो ये पानी मेरे ऊपर चढ़ाए। जब हम ठाकुर जी के स्नान करते, ये पानी का क्या नाम है? चरणामृत। सो वो चाहते हैं कि ये चरणामृत मेरे ऊपर चढ़ाए। और जब आप नंदा लाला का लाला को भोजन कराती है, तो इसके जो उच्चिष्ट है, जूते है, ठाकुर जी के जूते का है महाप्रसाद, वो मेरे पास लाइए। फिर मैं यहन बैठे रहूंगा प्रांगण में, और किसी प्रकार का कोई राक्षस नंदग्राम की सीमा के अंदर नहीं आएगा, कोई भी राक्षस नंदग्राम की सीमा में नहीं आएगा। तो ये है असली प्रणाली जिससे हम देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर सब देवी देवताओं को ये महाप्रसाद खिलाते, तो फिर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे ठाकुर जी के महाप्रसाद से। और ये प्रणाली आज भी मौजूद है, क्योंकि बृंदकुंड जो सड़क को पार करके एक दूसरे जमीन है, कोई मुसलमान परिवार के जमीन है, इसके छोटे से लड़कर रोज जाते, और जो पत्तल जो महाप्रसाद जो भंगशंकर भगवान को लगाते वो चुरा लेते ये पत्तल। तो आज मुझे अब पता है कि आज भी ये प्रणाली चल रही है, शंकर भगवान ये बाजबो के बाद एक पत्थर लाते शंकर भगवान को, और शंकर भगवान के ऊपर ये चरण में चढ़ाते हैं। और नंदगांव के अंदर किसी प्रकार का कोई राक्षस कभी आए नहीं, नंदगांव में कोई राक्षस का लीला नहीं है। अब बाहर जाना पड़ेगा, ये केदरबान में ये कौन सा आया, बाकासुर आया, और बहुत से अलग अलग स्थान पे बहुत से असुर आए, लेकिन बंदीरबन में प्रलंब असुर आया, लेकिन नंदगांव में किसी प्रकार का कोई असुर नहीं आया। केवल वाज रूमर, अफवास, अफवाह, ये अफवाह है कि कोई राक्षस आया, क्योंकि नंदगांव की पूर्व की तरह है एक यशोदा कुंड, जहां माँ यशोदा बेकार उसका पूजा पाठ करती है, और वो नहीं देख सकते कि नंदलाल उसके दृष्टिकोण के बाहर जाए। तो माँ यशोदा सब पूजा पाठ कपड़े धोते सब कुछ करती है, और नंदलाल को बताते कि दूर केलन मत जाओ, लाल बन हवा है, दूर मत जाओ गबन में, और ये हाओ आपको पकड़ लेगा। और नंदलाल ने पूछे हाओ क्या है, हम कभी ना देखा हाओ। और माँ यशोदा ने कहा कि लाला वो बहुत काला है और बड़ा है, बहुत लंबे लंबे बाल, काला बाल है, इसके बहुत बड़ा पीली वाली आंखें हैं, बहुत तीव्र लंबे लंबे कान है, बहुत लंबे लंबे नाक है, इसके मुंह बहुत बड़ा है, इसके मुंह में तीव्र दांत है, और उसका नाखून ठहरे है और बहुत तीव्र भी है, आपको पकड़ लेगा और खा लेगा। सुनना लाला डर गए, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब बच्चों का बहुत लंबे याद शक्ति है ना, इसकी स्मरण शक्ति बहुत लंबे है, स्पेशली में विशेष रूप लाला। सो दोबारा दूर चलने लगे, समय यशोदा ने कहा कि दूर केलन में जाओ, लाल बन हवा है, हा? दूर खेलन दूर बन में मत जाना खेल के लिए, ये हाव आपको पकड़ लेगा। और नंदलाला ये हाव क्या है, माँ यशोदा ने कहा कि ये बहुत बड़ा काला लंबे लंबे बाल है, इसके बहुत तीव्र ठेरे वाले नाखून है, इसके बहुत पीली वाली बड़े बड़े आंखे है, लंबे लंबे खान है, बहुत बड़ा मुंह है, इसे तीव्र दांत है, आपको पकड़ेगा और खा लेगा। तो नंदलाल डर गए। लेकिन क्यों ये छोटे लाला का बहुत लंबी स्मरण शक्ति दोबारा चलने लगे। हमारे यशोद ने कहा कि दूर खेलन में जाओ, लाल बन हाओ है। ये हाओ क्या, हम तो कभी ना देखा हाओ मैया। लाला ये बहुत बड़े बड़े लंबे काले बाल है, इसके बहुत ठेरे लंबे लंबे नाखून है जिससे आपको पकड़ेगा, इसके बहुत बड़े बड़े पीले आंखें हैं जिसका आपको देख लेगा, इसके बहुत लंबे लंबे तीव्र कान है जिसको आपको सुन लेगा, इसके बहुत खाले खाले लंबे लंबे नाक है जिससे आपको सुन रहेगा, और इसके मुंह इतना बड़ा है कि एक साथ आपको खा लेगा। अरे माया, हम तो कभी नहीं देखा हाओ, तू कहानी बना रहे। जमुना तट पे देनो चारे थे, नहीं देखो हाय, मैं पूरा जमुना के तीर पर चले गए गाय चराने के लिए, कभी ना देखा हाओ। बेन पताल खाली अदा में मां भी ना देखो, मैं खाली अदा में खुद किया और पूरा पताल लोग तक पहुंचे, और पताल लोग भी कोई हाओ ऐसा हाओ नहीं था। जमुना तट पे देनो चारे थे, नहीं देखो हाओ, बेन पका खाली अदा में मां भी ना देखो हाओ। तू केवल कहानी बना रहे मुझे डराने के लिए, ऐसा हाव होते नहीं। और अचानक माँ यशोद का आंख बहुत बड़ी हो गया और बोलेगी अभी मत देखो, एक आ रहा है। माँ यशोद दौड़ने लगी और लाला दौड़ने लगे, बलदाव दौड़ने लगे और सुबाल दौड़ने लगी और शोक कृष्ण दौड़ने लगे और बासुकामा दौड़ने लगी और सुदामा दौड़ने लगी, श्रीदामा दौड़ने लगी, सब दौड़ने लगी माँ यशोद के पीछे। और देखो कितने छुटोर माँ ये सोरे, वो ठीक 12 बजे पहुंचेगी महल जब नंद बाबा का लंच होने वाला था, और सब ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ बैठे और श्वास के बीच में और सब खाना के बीच में बोला कि बाबा हम इतने से बच गए एक हाव से। सो राक्षस नहीं है लेकिन केवल अफवाह अफवाह है हाव हाव है। एक दूसरा ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, और भक्ति रत्नाकर ये इसके जो पंचमा अध्याय, मेरे प्रिय गुरु भाई पुंडरीक विद्यानिधि जो बहुत सेवा की आपके बॉम्बे मंदिर में पुराने दिनों में, पुंडरीक ने इसको मथुरा मंडल परिक्रमा के रूप में अनुवादित किया, और पूरा ब्रज परिक्रमा का वर्णन है जैसे राघव पंडित श्रीनिवास और नारदराम को ले जा रहे परिक्रमा जो वैष्णव आचार्यों के दूसरे पीढ़ियां हैं, श्रीनिवास और नारदराम परिक्रमा ले जा रहे। जब नंदगांव के पास पहुंचते फिर बताते कि देखो नंदगांव की पश्चिम ओर वही स्थान है जहां वृंद देवी विराजमान है और पूरा ब्रज लीला का व्यवस्था करती है। तो जो वृंदकुंड में गए आप जानते हैं कि बिल्कुल पश्चिम साइथरा में है। वास्तव में जो मंदिर के जो सेंट्रल केंद्रित मेराव है इसके बीच में बैठेंगे 21 मार्च और 21 सितंबर क्या है इक्विनॉक्स, दिन और रात बराबर है। अभी ये रात बड़ा हो या दिन छोटा हो रहा है, तो ये इक्विनॉक्स है। सो सूर्य भगवान बिल्कुल पूर्व की तरह उदय होगा, वो कभी कभी उत्तर में कभी कभी दक्षिण में, बिल्कुल पूर्व की साइड में उदय होगा। तो अब ये मेराब के बीच में बैठे और 21 मार्च 21 सितंबर ठीक नंद बाबा का शिखर के पीछे ये सूर्य उदय होगा ऐसे, फिर इस तरह चल रहे फिर ये गर्मियों में इस तरह चलते ठीक शिखर की बिल्कुल नंदगांव के पश्चिम ओर में है जहां वृंद देवी विराजमान है। ये वृंद देवी के नित्य निरंतर का वास स्थान है और क्या करती लीला का व्यवस्था करती है। रोज सवेरे सवेरे पूर्णमासी जो पूर्व की साइड में रहती वो अपने नातनी नंदी मुखी के साथ आती है और बृंदी देवी के साथ बैठते और ये सारी ब्रज लीला का प्लानिंग करती है। इसलिए ये वृंदकुंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये ब्रज लीला प्लानिंग कमीशन है, जैसे आपका बीएमसी है, दिस ब्रज लीला प्लानिंग कमीशन। ये सारी लीला का प्लानिंग होते है वृंदकुंड में हर रोज सवेरे सवेरे। कभी कभी नंदलाल आते कुछ सुझाव देते कि कौन सा लीला होगा आज, कभी कभी राधारानी आ तो बस में आप जाते बहुत राउंड करके बरसाना जाते, मेरे भजन कूटे के ऊपर चढ़ करके आप देख सकते कि बरसाना वास्तव में बिल्कुल दक्षिण की ओर में है। तो कभी कभी राधारानी आती है और कुछ सुझाव देते हैं कौन सा लीला होगा आज। और वृंदा देवी के इतना प्यार है राधा रानी की प्रति, राधा रानी कोई सलाह देगा तो तुरंत वृंदा देवी इसको पूर्ण करते हैं, इसका साकार करते हैं, राधा रानी की इच्छा साकार करती है। तो सब लीला का प्लानिंग होते है वहां। फिर वृंदा देवी इसके सारे व्यवस्था करती है, जो वृंदा तुम गाए है आप तो देखा ये वृंदा देवी का प्राचीन रूप है, ये पूरा वृंदावन वृंदा देवी के नाम से है, वृंदा बन बन होना चाहिए लेकिन आपके बॉम्बे के जैसा हो चुके हैं और सब मकान भी बॉम्बे के जैसे का समान कीमती हो गया है लेकिन उसका वास्तविक रूप है बन। इसलिए मैं वृंदकुंड का छोटा सा विकास कर रहे हैं जिसे आप जा सकते हैं और ब्रज का वास्तविक स्वरूप देख सकते हैं। सो ये वृंदा देवी का बन, वृंदा बन। लेकिन वृंदा देवी अपने आप राधा रानी के चरणों में समर्पित किए पूरा बन, इसलिए राधा रानी का नाम हो गया वृंदावन ईश्वरी। लेकिन राधा रानी अपॉइंट किए वृंदा देवी ये बन देवी, ये वृंदावन का इष्टदेव इष्टदेवी है, बन देवी है। इसका प्राचीन रूप आप मंदिर में दर्शन करेंगे, वृंदा देवी का प्राचीन रूप है, एक गोपी के रूप बन देवी के रूप में। इसका दाई हाथ आपको आशीर्वाद दे रहा है, इसके बाई हाथ में एक कमल है, कमल के ऊपर एक पीली वाली ठोटा देते हैं, क्योंकि बाबा माधव दास जिन्होंने ये स्थान इस्कान को समर्पित किया इन्होंने कहा कि पहले पीली वाली नील वाली हरी वाली और लाल वाली टोटा होते थे ब्रज में, अभी के भी हरी वाली रह गई। तो ये हरी वाली टोटा कमल के ऊपर बैठे इसका नाम है दक्ष, और दक्ष के लाखों 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 लाख टोटा का शिष्य है और ये पूरे ब्रज में जाकर वापस आकर राधा रानी को सब सूचना देती है। जैसे आपका मोबाइल है पूरा महाराष्ट्र का कवरेज है, सो ये वृंदा देवी का मोबाइल है और पूरा ब्रज मंडल का कवरेज है। लेकिन आप केवल जानते आपका जो कॉन्वर्सेशन है, वृंदा देवी जानते सबका कॉन्वर्सेशन, जो कुछ बात हो रहे किसी से, किससे बात कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे, सब कुछ वृंदा देवी के पास ये खबर आती है, कौन क्या कर रहे, कौन किसके साथ जा रहे, कौन क्या कर रहे, ये सब वृंदा देवी के पास ये खबर आती है। जैसे पिछले हफ्ते कुछ लोग आए चेन्नई से, तो ये सब पक्षी आते जाते जो वृंदकुंड में आया, देखे ये सब तोता आते जाते ये सब तोता आया और वृंदा देवी से बात किया कि अभी दिन बांधो कुछ बहुत ही खाले वाले लोग के साथ घूम रहे ब्रज में तो सब खबर वृंदा देवी के पास, इसलिए वृंदा देवी का नियंत्रण होते वो सब लीला का प्लानिंग होते, फिर वृंदा देवी उसका व्यवस्था करती है। और ये ब्रज की supreme temple commandress. कहाँ लीला होगा वो उसके निर्णय है, कौन सा वृक्ष होगा, कौन सा फूल होगा, कौन सा रंग की होगा, कौन सा सुगंध होगा, कौन सा पक्षी आएगा, कौन सा रंग होगा, कौन सा गाना गाएगा, ये सब वृंदादेवी का हाथ में है. और कौन आएगा लीला में, ये सब वृंदादेवी की पूरी व्यवस्था करते हैं. और ठाकुर जी का और सेवा करने के लिए वो भी स्टार होते हैं, एक्सपेंस yourself, ये तुलसी पौध के रूप में. ये सब तुलसी पौध वृंदादेवी का विस्तार है, जैसे ये सब लक्ष्मी राधा रानी की विस्तार है, ये सब तुलसी पौध वृंदादेवी का विस्तार है. जैसे हम जानते हैं कि बिना तुलसी दल हम किसी भोग नहीं लगाते ठाकुर जी को, सो ठीक है, इसी प्रकार कोई लीला नहीं होते. ये वृंदादेवी अस्तक में विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या बताते कि वृंदादेवी ठाकुर जी का लीला शक्ति है, कोई लीला नहीं होती बिना वृंदादेवी का हाथ इसमें है, पूरा लीला की व्यवस्था करती है. ये वृंद कुंड है, पीछे एक और कुंड है, इसका नाम है गुप्त कुंड. गुप्त माने रहस्यपूर्ण, रहस्यमय. तो वहां एक गुप्त लीला, रहस्यपूर्ण लीला होते है ये सब सबेरे के लीला के पश्चात. सबेरे के लीला का अर्थ है कि राधा रानी आती है ठाकुर जी का रसोई बनाने के लिए नंदगांव में, या बरसाना से या जावत से, क्योंकि आप सब जानती है कि जानते हैं कि राधा रानी का वरदान है दुर्वास ऋषि से. मैं इस कहानी को नहीं बताना पड़ा, जानते नहीं जानते, एक और कहानी बताना पड़ेगा. ओके. एक बार दुर्वास ऋषि आए ब्रज में, और आप सब जानते हैं दुर्वास ऋषि वो प्रसिद्ध है किसके लिए, क्रोध, बहुत क्रोधी साधु है. सो आया ब्रज में, इसका बहुत बड़ा जाता था, उसका दाढ़ी वो गांठ में लगा था, और बहुत क्रूर भाव से सबको देख रहा था. सो सब छोटी छोटी गोपिका भाग गई, केवल राधा रानी रह गए. राधा रानी बोला बेटो बाबा, बेटो बाबा, बेटो बाबा, और एक मिट्टी से चूल्हा बनाया, फिर मिट्टी का बर्तन बनाया, फिर मिट्टी की सब्जी बनाया, मिट्टी का पकौड़ा बनाया, मिट्टी का सिंगारा बनाया, मिट्टी का सब कुछ चटनी बनाया, मिट्टी का लड्डू बनाया, फिर एक मिट्टी का थाली बनाया, फिर मिट्टी कटोरी बनाया, फिर सब कुछ रखकर उसके थाली पे कटोरी में फिर थोड़ा सा फूल कुछ पानी लगाया, और ये सब मिट्टी का सामान दुर्वास ऋषि के पास लाया कि लो बाबा ठीक है लाली, ठीक है लाली, ना लो बाबा ठीक है लाली, लो बाबा लो बाबा. तो फिर राधा रानी ने जबरदस्ती से एक लड्डू उसके मुंह में डाला, मिट्टी का लड्डू, और दुर्वास ऋषि ऐसा सुंदर स्वादिष्ट लड्डू उसके जीवन भर कभी नहीं खाया. इनको इतना चार्ज लगा कि अपने हृदय से वरदान दिए, क्योंकि जो वरदान आते हृदय से ये बहुत शक्तिशाली है. जैसे हम भारत में देखते हैं ये सब बच्चे लोग बहुत चतुर है, ये सब बच्चे लोग सवेरे सवेरे चाचा जी के जी का और मामा मामी का दादा दादी का सबके पास माता पिता के पास जाते हैं, क्या करते वो नीचे जाकर उसका भाव चुटते हैं. और इतना सुंदर भाव होते इस ये देखकर ये सब बड़े बड़े लोग इतना सुखी हो जाते हैं, इतना संतुष्ट हो जाते हैं, तो हृदय से वरदान देते हैं. पूरे दिन इनको पागल बनाएंगे, लेकिन सुबह सुबह उसको आशीर्वाद देते हैं. आयुष्मान बाबा ये बहुत चतुर है, ये बच्चा लोग भारतीय बच्चा लोग. और जो हृदय से आशीर्वाद होते वो बहुत शक्तिशाली है. तो अपने हृदय से दुरास ऋषि ने कहा कि लाली जो कुछ खाना आप बनाएंगे रसोई बनाएंगे वो अमृत के समान होगा और जो आपका रसोई खाएगा इसके किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगा, किसी प्रकार के कोई बीमारी नहीं होगा। जब ये विश्वासीगण सुना कि ऐसे वरदान है नंदलाल राधा रानी के, तो ये जोर किया कि राधा रानी ठाकुर जी के रसोई बनाएगी, क्योंकि हम एक बहुत विचित्र चीज देखते हैं ब्रज में, क्योंकि हम सब लोग बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन हमारा अपने बच्चे को और प्यार करते के दूसरों का, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये विचित्र चीज देखते ब्रज में कि ये सब ब्रजवासीगण और प्यार करते नंदलाल को कि अपने बच्चे को। और जब सुना कि नंदलाल अगर राधा रानी के रसोई का इसकी किसी प्रकार के कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि ये माता पिता हमेशा चिंता करते कि ये हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, विशेष रूप हमारे विदेशी भक्तगण जब आपका बच्चा ले आते भारत में, क्योंकि सब माता पिता मना करते नहीं 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 वहां जाएंगे बहुत बीमारी है मर जाएंगे, बहुत चिंतित हो गया, नहीं 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 वहां मत ले जाओ, बहुत मुश्किल के साथ हम बच्चा ले आने ले आते कि ये माता पिता में इसे चिंता करते। सब ये सब विश्वासीगण सुन है कि नंदलाल के किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगा, राधा रानी के रसोई खाएगा, तो ये जोर किए कि राधा रानी ठाकुर जी के रसोई बनाएगी, तो फिर उसको ये स्वाइन फ्लू नहीं होगा और नहीं मरेगा और बहुत देर तक रहेगा हमारे साथ, इसको स्वाइन फ्लू नहीं होगा। तो रोज राधा रानी ठाकुर जी के रसोई के लिए आती है। एक दिन मनोहर लड्डू बनाया, अब समझ सके मनोहर एनचैंटिंग लड्डू। और एक कमरा है जहां माँ रोहिणी और माँ यशोदा ये सब ग्वाल बाल बिठाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। तो इस दिन राधा रानी वो वापस नहीं गए, वो रह गए और खिड़की से देख रही थी कि कैसे लाला अपना मनोहर लड्डू का कैसा लगेगा, वो देख रही थी खिड़की से। और ठाकुर जी अपना आंख के खोने से देखे कि राधा रानी देख रहे, उनका पत्थर पर देखे कि बहुत से मनोहर लड्डू है। सो ठाकुर जी एक लड्डू पकड़ लिया, उसके मुंह में डाला, अभी आपका अनुवाद की ओर न देखना मेरी ओर देखना कि इसका वचन नहीं है अब कभी नीम खाया ऐसे मुंह बनाया और राधा रानी बहुत चिंतित हो गया। फिर नंदलाल ये सब लड्डू श्रीराम के पत्र पे डाला और श्रीराम ने कहा कि सब लाला के लड्डू मेरे पत्र पर आए और खाने लगे पिंग पिंग पिंग। फिर राधा रानी को मालूम हुआ कि ये इसके वो मजा कर रहे तो ये सवेरे की लीला। इसकी लीला के पश्चात जो रास्ते है नंद वृंदकुं के सामने वो जाते बरोकर जो नंद बाबा का पश्चिम गौशाला है, नंद बाबा का पश्चिम गौशाला बरोकर। सो नंदलाल इस रास्ते ब्रेकफास्ट के बाद इस रास्ते पर जाते गाय को पकड़ने के लिए चढ़ाने के लिए। तो राधा रानी ये सब रसोई को साफ करके बताती अपने मित्र मंदो को कि मैंने सुना कि नंदगांव की पश्चिम ओर बहुत सुंदर उद्यान है, चलो देखे आओ। सो दूसरे रास्ते से राधा रानी और सब सखी मंदो दूसरे रास्ते से आती है। आने के समय राधा रानी कुछ देखती है, उसको चढ़ लगते है, वो ललित साखी के कंधे पे हाथ लगाते है, ओ ललिते मैं क्या देख रही हूं, ऐसा लगते है कि एक नाव निर्मित मानसून का मेघ है और इस मेघ इस बादल के नीचे हमेशा बिजली होते रहते हैं, जैसे हम नासिक से आ रहा था, हम देखे कि मम्मी के ऊपर बिजली होते रहते, हम तो वहां सूखे सूखा हवा खा रहा था, लेकिन हम देखे आगे नहीं, और अब तो गाय नहीं, वेयर इज आवर सीताराम, अब तो गाय थे, हाँ देखे मम्मी के ऊपर बिजली होते रहते है, ये मैं के नीचे बिजली होते रहते हैं, और इस मैं के ऊपर एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष है, और बहुत आश्चर्य की बात एक ऊंटी वाली इंद्रधनुष है मग के नीचे है, और ये मैं के सामने बहुत से श्वेत पक्षी उड़ रहे हैं। ओ ललिते मैं क्या देख रही हूं, और ललिता सा के बात है कि स्थिर हो जाइए, ये कोई किसी प्रकार का मेघ नहीं है, ये आपका प्रिय श्याम सुंदर है जो नित्यरंजन बिजली होती है, ये इसका पीतांबर डोटी है, जो आप मोर जो इंद्रधनुष देखते हैं इसका मोर पंख है, इसका सिर पर मोर पंख है, जो ऊंटी वाले इंद्रधनुष है इसका वनमाला है, और जो श्वेत पक्षी जो उड़ रहे ये इसका मोती माला इसके छाती पर नाच कर रहे, ये आपका प्रिय श्याम सुंदर है। तो राधा रानी स्थिर हो जाती है और आती है, और एक कमल प्रकट हो जाते हैं, और स्वर्ण कमल के ये कमल स्वर्ण है, इसके स्वर्ण केंद्रित मंडल है, वहां एक स्वर्ण सिंहासन प्रकट हो जाते हैं, और राधा और श्याम सुंदर इस सिंहासन के ऊपर बैठे, और अष्ट दल पर ये अष्ट सखियां विराजती हैं, फिर आठ और दल प्रकट हो जाते अष्ट मंजरी बैठे हैं, फिर और सोलह दल प्रकट हो जाते और सखी और मंजरी आते, फिर बत्तीस, फिर चौसठ, फिर एक सौ अट्ठाईस, फिर दो सौ छप्पन, फिर पांच सौ बारह, फिर धीरे 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 मेगाबाइट्स और मेगाबाइट्स और सखी और मंजरी इसी मिलन गुप्त मिलन में आ जाती है। इसके नाम है योगपीठ, तो ये सबसे घनिष्ठ और सबसे कॉन्फिडेंशियल सखी और मंजरी है, और जब ठाकुर जी का राधा रानी के मिलन में आती है इसको योगपीठ कहते हैं। तो ये दूसरा कारण है वृंदकुंड बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये ब्रज के प्रातकालीन और प्रथम योगपीठ, प्रातकालीन और प्रथम योगपीठ, मध्यकालीन योगपीठ है राधाकुंड, और सायंकालीन योगपीठ है राधा गोविंद मंदिर के पास वृंदावन में, ये योगपीठ है। सी ये ब्रज के प्रातकालीन और प्रथम योगपीठ है, तो ये दूसरा कारण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और ये स्थान इसको उनको समर्पित हुआ एक बाबा था, इसका नाम था बाबा माधव दास। वो केवल कृष्ण के बारे में और वृंददेवी के बारे में, ब्रज के बारे में, अपने आप के बारे में कभी बात नहीं किए ज्यादा। बाद में बरसाने में एक दूसरा बाबा मिले, इसका नाम था बाबा मदन मोहन, कभी ना रहे, चार साल पहले वो गोलोक धाम गमन किया। मदन मोहन बाबा वो माधव दास बाबा का बहुत घनिष्ठ मित्र था, और मदन मोहन ने कहा कि दोनों भक्ति सदन सरस्वती के शिष्य था, जब थोड़ा सा झगड़ा होने लगे गौड़िया माधवी वो ब्रज में आए और बाबा जी बन गए। मैं हमेशा सोचते थे कि बाबा का गौड़िया मठ का कुछ स्पर्श है, क्योंकि विशेष रूप इसका अंत समय, क्योंकि उसको कैंसर लगा था अंत समय, हमेशा मुझे बताते कि जो कुछ प्रभुपाद आपको सिखाए इसके मार्ग पर चले जाइए और किसी के बात मत सुनो, हमेशा बताते जो कुछ प्रभुपाद आपको दिया था इसके मार्ग पर चलिए और किसी के पास मत जाना, हमेशा बताते। और बाद में हम पता लगे कि वास्तव में ये भक्ति सिद्धांत कृष्ण प्रभुपाद के गुरु भाई थे पहले, फिर ब्रज में आकर बाबा जी बन गए। तो ये बाबा जी मेरे पास आए एक दिन जब हम अध्यक्ष था मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर का, उसने कहा कि मेरे छोटे से स्थान है वृंदकुंड, मैंने छोटे से मंदिर बनाया, छोटे से मूर्ति स्थापना किया, लेकिन मुझे कैंसर लगा है जिसको संभालो। फिर उनसे ये हमने सुना कि वो सबके पास गए थे, और मुझे सीख लिया कि ये न केवल इस्कान का मंत्र है, ये सार्वभौम का मंत्र, यूनिवर्सल मंत्र। वो सबके पास गए, वो गौड़ीय संप्रदाय के बाहर भी गए, क्योंकि सब वैष्णव तुलसी को मानते हैं और सब लोग एक ही मंत्र बोले। जैसा आप आपका मंदिर के जक्ष के पास जाते, जीबीसी के पास जाते और बहुत सुंदर नया कार्यक्रम का प्रस्तुत करते, तो क्या कहते? नो मैन नो बनी, आदमी है पैसा नहीं है। इज़न्ट इट, दिस इज द मंत्र यू ऑलवेज हियर। ये मंत्र, ये न केवल इस्कान का मंत्र है, ये सार्वभौम का मंत्र है, यूनिवर्सल। और सब बोला बाबा हमारे पास आदमी नहीं ना पैसा है। और मुझे पता लगा कि ये स्थान हम कभी नहीं देखा, हम तो इसके जो दो स्टोरी बजन कुटीर हम देख रहा था रास्ते से, मुख्य रास्ते से, हम तो बागटों के ये बृंद देवी के स्थान वहां कभी गए नहीं। सोचते कि बाबा चलो, सो आए थे और कितने सुंदर एकांत स्थान मिले जहां कोई किसी प्रकार के तकलीफ किसी को नहीं देते वहां। और वहां जैसे आजकल वृंदावन में केवल ये आवाज सुनती, पीम पीम वहां केवल पक्षी की आवाज सुनते थे, ये मोर का आवाज करते थे, अब वृंदकुंड में रहेंगे सवेरे सवेरे चारों ओर उसके आवाज यन से शुरू होगा, फिर यन होगा, फिर वहां होगा। चारण और और ये विश्वासी गान बताते हैं, ये मोर क्या कहते हैं आप जानते?
मेगाओ मेगाओ मेगाओ,
बदल आ जाइए,
मेगाओ मेगाओ।
लेकिन जो बाग्स वृंदकुंड का मंदिर बनाया, इसका नाम है अच्युत प्रभु, वो एक विशेष स्थान अमेरिका के से है। वो बताते ये सब मोर गाते,
न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क।
ये मोर के पश्चात एक आवाज आते हम आपके नासिक में, आपके जटायु तीर्थ में भी सुना और ये कपिलधारा में भी सुना। एक पक्षी है वो खोआ के बड़ा है, लेकिन इसी रंग के इसके पंखे हैं, ये आवाज करते। ब्रज में इसको डोगी लगाते हैं, I don't know what you call it here, but ब्रज में इसको डोगी लगाते हैं। फिर एक पक्षी है जलमुर्गी, जो वृंदकुंड की चारण, उसके बहुत सुंदर श्वेत कमीज है और बहुत सुंदर काले वाले जैकेट है, इसके पूंछ ऐसे करते जब वो चलते हैं, पिंग 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 पिंग, और वृंदकुंड के कोने पे बैठे और ऐसे आवाज करते, लेकिन चलते चलते जब दो मिल जाते इसके आवाज नकल करने भी उसके लिए, और गर्मी समय हमेशा ये आते हैं एक नीम वृक्ष के जो थोड़ा झुके हैं वृंदकुंड के ऊपर मंदिर के पास, जिससे वो संध्या आरती देख सकते हैं। ये सब जल मुर्गी आते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं और जब हम संध्या आरती का गायन करते की बा जय हो जय गोर फिर एक डोरा है दव, वो गाती है
रहे श्याम रहे श्याम रहे श्याम,
इसके ऊपर गाते
रहे श्याम।
लेकिन बसंत में दूसरा गाना, क्योंकि गोरपणी में समय है, तो वो दूसरा गाना गाते
श्री गौर नितरंद बोल श्री गौर नितरंद बोल श्री गौर नितरंद बोल,
फिर एक टीचर है और अभी मैं तो जांच कर रहे थे ये सब क्योंकि हम हमेशा चटक के बारे में सुनते चकोर के बारे में बहुत से पक्षी के बारे में सुनते लेकिन हम तो देखे नहीं कोई सारा वो वहीं रहते यमुने के पास एक ये चक्रवक हम तो समझ ली ये रडी गूस है इंग्लिश में रडी गूस हम तो देखे इसके थोड़ा सा लाल सा चट्टी है ये बट व्हाट डू यू से दैट्स बंगाली व्हाट डू यू से डक डक बटक बटक थोड़ा सा बड़ा है और स्वेद है लेकिन उसके छाती पर थोड़ा सा लाल सा रंग है ये चर्वक हम हमेशा चर्वक है वो चर्वक है ये चकोर ये टीचर का बहन है हम तो अभी तक पता नहीं किए कौन सा है लेकिन ये दोनों जमीन पर चलते रहते सारे दिन ब्रज में इसको टीचर कहते संस्कृत में थाइतीरा थाइतीरा पार्ट्रिज ये तैत्रेय उपनिषद ये तैत्रीय पार्ट्रिज का से नाम है तैत्रेय उपनिषद तैत्रीय पार्ट्रिज वो जमीन पे चलते रहते और रात में वो उस वृक्ष के ऊपर जाते और सवेरे सवेरे उसकी आवाज आते उसके टीचर कहते मैं नीचे आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ कमिंग डाउन आई एम कमिंग डाउन आई एम कमिंग डाउन ऐसे सुंदर सुंदर स्थान है सो मैंने कहा बाबा को कि हम वृंद देवी की सेवा करेंगे अभी फरवरी इस आने के फरवरी 10 साल हो गए मंदिर की स्थापना हुआ तो बहुत सुंदर फेस्टिवल होते हैं बहुत सुंदर मंदिर है जल के ऊपर जल महल है तो सब कभी वृंद को आइए बहुत वहां किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा कोई नहीं आएगा कोई आपके ऊपर नहीं आएगा हमें प्रॉपर विश्वासी दे दो ऐसे किसी प्रकार का कोई तकलीफ आप बैठकर प्रॉपर का पुस्तक पढ़ सकते चैंटिंग कर सकते कीर्तन कर सकते प्रॉपर का पुस्तक पढ़ सकते भजन कर सकते ये आपका स्थान है मैं आपके लिए बनाया है तो आप कभी आइए वृंदकुंड और उसका नाम लीजिए हरे कृष्ण श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि और वृंदावन धाम के प्रकट करने वाले श्रील प्रभुपाद की जय।